ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या, और हम अब अंतिम चरण के इस अध्याय के अंतिम श्लोक पर पहुंच चुके हैं। आज हम अंतिम श्लोक लेंगे। तो इस अध्याय में भगवान ने अर्जुन को जब कर्म की, योग की और कर्म योग की व्याख्या की, तो अर्जुन के बहुत से प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न इस अध्याय में अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः, कि वो कौन सी शक्ति है जिसके वजह से व्यक्ति अनिच्छा से, बिना इच्छा से पाप के लिए प्रेरित होता है। और ये प्रश्न कौन से श्लोक में अर्जुन ने पूछा था? 36वें श्लोक में, इस अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था। और इस एक प्रश्न का उत्तर भगवान प्रारंभ किए उसके अगले श्लोक से और अंतिम श्लोक तक। तो पूरे कुल मिलाकर भगवान ने 7 श्लोकों के द्वारा अर्जुन के उस एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो ये हम समझ सकते हैं कि अर्जुन का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण था, कि भगवान ने उसके उत्तर हेतु 7 श्लोक, भगवद गीता के 700 श्लोकों में से 7 श्लोक केवल एक इस प्रश्न के उत्तर के हेतु दिए। तो ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का इस प्रकार से है, क्योंकि अंतिम श्लोक है भगवान का कंक्लूसिव मैसेज, इसलिए भाग 2 में लेंगे हम। आज भाग 1 रहेगा और अगले बुधवार को इसका भाग 2 हम लेंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। भगवान यहां पर अर्जुन को महाबाहो इस नाम से पुकार रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को अर्जुन नहीं, कौंतेय नहीं, धनंजय नहीं, ये कोई भी नाम से उल्लेख नहीं किया। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को महाबाहो कह रहे हैं। हे महाबाहो अर्जुन, यदि इस दुरासदम काम, दुरासदम का अर्थ है दुर्जय, जिसके ऊपर विजय प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो, उसको कहते हैं दुरासदन। तो हे महाबाहो, ये दुर्जय दुरासदम शत्रु रूपी काम के ऊपर यदि विजय प्राप्त करना है तो भगवान कह रहे हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा समस्तभ्यात्मानम आत्मना, आत्मानम आत्मना, इसमें स्थित होकर आत्मा में और आत्मना में, हम उसकी व्याख्या करेंगे, इसमें स्थित होकर। और श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर ट्रांसलेशन करते हैं एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा का। श्रील प्रभुपाद कहते हैं यूजिंग डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो यहां डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, कोई भौतिक उपाय नहीं है काम वासना पर विजय प्राप्त करने का। यहां पर भगवान जो अंतिम श्लोक में ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, देयर इज नो मटीरियल सॉल्यूशन फॉर लस्ट, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा ही कोई इस जहि शत्रुम दुरासदम काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, केवल उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके, तो डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन क्या है, सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, इस पर गौर कीजिए, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवान यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि इस पर विजय प्राप्त करो। विजय प्राप्त करने का अर्थ है विन इट, कॉन्कर इट, डोंट किल इट, उस पर विजय प्राप्त। तो आज के हमारे चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से संबंध, बुद्धि से भी परे काम शत्रु का चौथा निवास स्थान। आज के श्लोक में बहुत गुप्त तरीके से भगवान संकेत के रूप में कह रहे हैं, अब तक भगवान ने काम शत्रु के तीन निवास स्थान बताए, आज के श्लोक में भगवान चौथा निवास स्थान बता रहे हैं। आत्मानम आत्मना शब्दों की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान ने जो दो शब्द आज के श्लोक में कहे हैं। तत्पश्चात भगवान ने अर्जुन को महाबाहो नाम से क्यों संबोधित किया है, और अंत में भगवान के अनुसार यह काम शत्रु अत्यंत दुर्जय है। तो ये केवल भाग एक, आज पार्ट वन इस श्लोक के हमारे चर्चा के विषय रहेंगे। तो श्लोक संख्या 42, यदि आपको याद है तो भगवान ने काम शत्रु के निवास स्थानों में से सर्वश्रेष्ठ बुद्धि को कहा पिछले श्लोक में, कि हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये तीन निवास स्थान हैं, और इन तीन निवास स्थानों में से सबसे शक्तिशाली जो हमारे अंदर, वो है हमारी बुद्धि। बुद्धि मन पर नियंत्रण करती है और मन इंद्रियों को यहां वहां कार्य में लगाता है। तो भगवान ये कह रहे थे कि एक भक्त जो साधना में लगा हुआ है वो पहले बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाता है, या बुद्धि से शास्त्रों को समझकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक परिवर्तित बुद्धि फिर मन को और फिर मन इंद्रियों को संयम में लाएगी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बुद्धि पर जोर दिया था, अब आज के श्लोक में भगवान एक तरीके से काम शत्रु का चौथा निवास स्थान बता रहे हैं, जो कि बुद्धि से भी परे, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से भी परे है। तो वो क्या है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला विषय काम शत्रु का चौथा निवास स्थान। हमने हमारे प्रवचनों में अक्सर हमारा सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, इसकी व्याख्या की है पहले। स्थूल शरीर जो कि दिखता है, ये पार्थिव शरीर जिसको कहते हैं, अर्थली बॉडी, ये चर्म का बना हुआ, हार्ड मास का बना हुआ, ये शरीर जो हमको दिखता है, जिसको हम छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये है स्थूल शरीर। और सूक्ष्म शरीर हमारा बना हुआ है मन, बुद्धि और अहंकार। तो चौथा निवास स्थान भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि ये काम शत्रु का चौथा निवास स्थान, जो कि बहुत कम व्यक्तियों को समझ में आता है, बहुत दुर्लभ है कोई मनुष्य जो पहचान पाए कि मेरे अंदर की जो काम वासना है वो मेरे अहंकार में स्थित भी है। हाँ, इंद्रियों के द्वारा तो लोग उसको प्रदर्शित कर ही रहे हैं, मन के द्वारा भी प्रदर्शित कर रहे हैं, बुद्धि के द्वारा कम लोग पहचान पा रहे हैं, अहंकार तो बहुत दूर की बात है। तो प्रश्न ये है कि ये काम वासना अहंकार के द्वारा कैसे हमारे ऊपर हावी है। अब ये जो शब्द है अहंकार, संस्कृत में अहंकार का अर्थ है अहम करोति इति अहंकार, मैं जो करता हूं, आई एम द डूअर, इसको कहते हैं अहंकार। तो हां, एक शुद्ध अहंकार है और एक मिथ्या अहंकार है। शुद्ध अहंकार है कि मैं भगवान का सेवक हूं, उसमें भी मैं शब्द आ रहा है, उसमें भी अहम आ रहा है, परंतु अहम कृष्ण दासोस्मि, कि मैं कृष्ण का दास हूं। और एक मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार का अर्थ है कि मैं भोगता हूं, मैं ही वो भगवान हूं, उसको बोलते हैं मिथ्या अहंकार। तो यहां पर काम शत्रु मिथ्या अहंकार को लेकर हमारे ऊपर हावी होकर हमसे क्या कुछ नहीं कराता। तो अहंकार से सबसे पहले कौन सी बुद्धि पैदा होती है, देहात्म बुद्धि, और देहात्म बुद्धि के वजह से काम वासना। देखिए, काम वासना का फाउंडेशन है ये शरीर। जब तक ये शरीर है तब तक काम वासना इस शरीर के द्वारा कार्यरत है। ये कह सकते हैं कि ये व्हीकल है काम वासना के लिए, ये शरीर। इसलिए हम देखते हैं कि क्योंकि इस भौतिक संसार में, विशेष रूप से कलयुग में, काम वासना या उस भोग को सबसे ऊंचा माना गया है, सबसे ऊंचा अर्थात भौतिक सुखों में सबसे ऊंचा, तो इसलिए चारों ओर जो उसका वाहन है उसके संरक्षण के पीछे लोग भाग रहे हैं। और वाहन क्या है, शरीर। शरीर जब होगा तब जाके तो व्यक्ति काम वासना भोग पाएगा, यदि शरीर ही नहीं तो काम वासना कैसे भोग पाएगा। तो इसलिए इस शरीर में अपनी बुद्धि लगाए रखने के लिए काम वासना को आवश्यक है कि हमारे अंदर एक ऐसे वस्तु को पकड़ लें जो हमें हर समय इस बात पर विश्वास दिलाता रहे कि हम ये शरीर हैं। हर क्षण, अभी हम लोग इस कमरे में हैं, आप लोग बैठे हुए हो, मैं खड़ा हुआ हूं, हमारे शरीर के जो भी कार्यकलाप चल रहे होंगे, सांस ले रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, हृदय दिल की धड़कन चल रही है, अंदर हमारे जितने शरीर के पुर्जे हैं वो भी चल रहे हैं। तो ये हम लोग जो हमारे शरीर के ऊपर इतना जो हर क्षण गौर करते रहते हैं या अनुभव करते रहते हैं, किसके वजह से? अहंकार के वजह से। और हमको अभी बैठे बैठे ये नहीं लगेगा कि आप सीधा मेरे को बोल रहे हैं मैं अहंकारी हूं। अहंकारी का मतलब केवल ये नहीं कि जो बहुत बड़ा अभिमानी घमंडी है, अहंकारी का मतलब हर समय देहात्म बुद्धि में रहना। तो सुबह उठते ही सबसे पहली हमारी चेतना कहां जाती है? मैं उठा, मैं जो सोया था मैं अब उठ गया, अब मैं भूखा हूं, अब मैं नींद में हूं, अब मैं सुस्ता रहा हूं, अब मुझे उठना है, ऑफिस जाना है, नहाना है, मंजन करना है, जो भी कुछ। तुरंत फोकस कहां जा रहा है हमारा? उठते ही शरीर के ऊपर, देहात्म बुद्धि। तो ये अहंकार के वजह से तुरंत वो अहंकार ऑन ही रहता है, वो कभी स्विच ऑफ नहीं होता है। जैसे कई सेल फोन होते हैं ना, स्विच ऑफ करने के बाद भी अलार्म बजता है उसमें, है ना? तो ये अहंकार वैसा है कि रात को आप सब अपने एप्लीकेशंस शट डाउन कर दो, आंखों के सब सोए हुए, लंबे लेटे हुए, एकदम मुर्दे की तरह। लेकिन अहंकार, अहंकार अंदर एक्टिवेटेड है पूरा। अहंकार अंदर, अब मैं सपने लूंगा। वो सपना कौन दिला रहा है? वो भी अहंकार दिला रहा है कि अब मैं अगले इलेक्शन में खड़ा हुआ हूं। अरे कौन नरेंद्र मोदी, कौन मनमोहन सिंह, कौन राहुल गांधी, मैं खड़ा हुआ हूं। सपने, अहंकार, ये सब। तो हर अवस्था में ये अहंकार हमें भूलने नहीं देता, हमें कभी भूलने नहीं देता कि हम ये शरीर नहीं। हर समय याद दिलाता रहता है। या तो हम शरीर के द्वारा किसी सुकून का अनुभव करते हैं, तब भी अहंकार कहता है देखो कितना अच्छा लग रहा है। जब हम रात को एकदम थक हार के जब सोते हैं, ठंड का मौसम है, रजाई लेकर, तो अहंकार बोलता है देखो रजाई के अंदर कितना मजा आ रहा है कि नहीं, किसको मजा आ रहा है? अहंकार प्रश्न पूछता है, किसको मजा आ रहा है बोलो, सोने से पहले सोने नहीं दूंगा, बोलो किसको मजा आ रहा है? हाँ, शरीर को मजा आ रहा है। सोने से पहले देहात्म बुद्धि में जाकर सोना, और उठते ही देहात्म बुद्धि। अब उठा कौन है? उठते ही अहंकार पूछता है कौन उठाए, बोलो जल्दी कौन उठाए, ये तो अभी खत्म कर दो। हाँ, शरीर उठाए, मैं, ये शरीर मैं उठाऊ। हाँ, उठते ही देहात्म बुद्धि में, सोने से पहले देहात्म बुद्धि, और फिर पूरे दिन भर देहात्म बुद्धि, मैं ये शरीर हूं, मैं अब यहां जा रहा हूं, ये देख रहा हूं, ये सुन रहा हूं, ये चख रहा हूं, ये सब हर समय। तो इस देहात्म बुद्धि में होने के वजह से जीव को काम वासना की जरूरत पड़ती है। यदि उसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं है तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जैसे आपको यदि हमारे ब्रह्मचारियों का उदाहरण दें, मुझे याद है पहले जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करने से पहले कुछ एक वस्तुएं बहुत मायना रखती थी। आप हंसोगे इसके ऊपर, कंघी। हाँ बहुत मायना रखती थी कंघी, हर समय जेब में कंघी होती थी, जेब ही नहीं अभी तो, हर समय जेब में एक कंघी होती थी, जिनके बाल हैं उनकी भी जेब में कंघी होगी, है ना, कंघी होती थी, और क्या क्या, शैंपू, तेल, जो जो ये बाल से संबंधित हैं वो सब आइटम लिस्ट में आते थे शॉपिंग के। अब बाल ही नहीं, ना तो कंघी की जरूरत है, ना शैंपू की जरूरत है, ना तेल की जरूरत है, क्यों? क्योंकि जो उसका फाउंडेशन है ये सारी चीजों का, वही उखाड़ के फेंक दिया। तो वैसे ही कि जब, इसलिए देखिए भगवत गीता की शुरुआत भगवान ने किससे की है, तुम आत्मा हो शरीर हो ही नहीं। अरे तो तुम शरीर ही नहीं हो तो फिर तुम क्या इन शरीरों के पीछे विलाप कर रहे हो। तो भगवान ने वो जो इस भौतिक संसार की नींव बुनियाद है उसको पूरा ठोकर मार के नीचे गिरा दिया। इस भौतिक संसार की बुनियाद है देहात्म बुद्धि। हालांकि हम ये कहेंगे कि बुनियाद काम वासना है, काम वासना के लिए देहात्म बुद्धि चाहिए, देहात्म बुद्धि को बरकरार रखने के लिए अहंकार चाहिए, ये सीक्वेंस है, ये समझ लीजिए। तो अब जब भगवान ने इस श्लोक में कह दिया कि अर्जुन ये जान लो कि जो भी व्यक्ति अपने आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भगवान के हैं इनडायरेक्टली, जो भी व्यक्ति अपने आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहा, अर्जुन पहचान लो कि वो काम वासना के वशीभूत है। बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। एनीवन हु इज नॉट लिविंग ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिट सोल इज लस्टी। व्हाई? Because of false ego, because of bodily conception, dehatma buddhi। जैसे मैं कई ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में उनको थोड़ा प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं, ये लोग हैं कुछ मॉडल्स और सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के। अब बहुत मुश्किल होता है इनको बताना हमारा बेसिक प्रिंसिपल, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल पे तो नाना पानी चल रहा है इनका। अब सोचिए कि कैसे इनको हम बोलें कि भाई हम तो शरीर ही नहीं है। अच्छा तो फिर ये इतनी हमारी फोटोएं खींची जाती हैं वो फ्रंट पेज पे, और इतने लोग हमको जो देखने आते हैं, क्या शरीर को ही तो देखने आते हैं, और आप बोलते हो हम शरीर ही नहीं है। आपने कभी देखा कि कोई बॉलीवुड की सिनेमा देखने गया है, आत्माओं को देखने गया, आत्माएं कहां है, हाँ कितनी सारी आत्माएं घूम रही हैं, वो कास्टिंग में थोड़ी डालते हैं, आज का हीरो ये आत्मा, हीरोइन प्रेत आत्मा, उनके शरीरों का नाम बताया जाता है ना। तो क्यों? क्योंकि ये नींव है, ये फाउंडेशन है। तो इसलिए भगवान यहां पर वापस है अर्जुन, और अर्जुन के द्वारा हमारे अंदर ये जो काम वासना जिस नींव पर खड़ी है उसको हिला रहे हैं। अब भगवान ने आगे ये जो दो शब्द कहे हैं, आत्मानम आत्मना, बहुत ही विशेष है। बलदेव विद्याभूषण हमारे टीकाकार, उन्होंने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की है। आत्मा को आत्मा के द्वारा निर्भय बनाओ। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, दूर करेंगे आपका कंफ्यूजन। यहां पर भगवान ने दो बार आत्मा शब्द इस्तेमाल किया है, आत्मानम आत्मना। तो बलदेव विद्याभूषण इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम अपने आत्मा को आत्मा से निर्भय बनाओ। तो इसके लिए हमें जो दो बार भगवान ने आत्मा शब्द इस्तेमाल किया है उसका अर्थ समझना होगा, तब जाकर इस पूरे वाक्य का अर्थ हम समझेंगे। तो आत्मानम का अर्थ भगवान कह रहे हैं अर्जुन तुम्हारा आत्मा, और आत्मना भगवान कह रहे हैं मैं। तो भगवान अपने आप को भी यहां पर आत्मा कह रहे हैं, हालांकि भगवान परमात्मा है परंतु भगवान अपने आप को भी आत्मा कह रहे हैं। और भगवान यहां पर अर्जुन को यह बता रहे हैं आत्मानम आत्मना का अर्थ है अर्जुन तुम्हें यदि काम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है निर्भय होकर तो मेरे सहारे के बिना नहीं हो पाएगा। तो जाते जाते भगवान, तीसरा अध्याय खत्म हो रहा है ना, तो जाते जाते भगवान तीसरे अध्याय में अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम ये मत समझना कि तुमने जो उर्वशी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी, अर्जुन ने उर्वशी से भी प्रलोभित नहीं हुए थे, तो भगवान कह रहे हैं कि ये मत समझना कि तुमने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, वो एक उर्वशी थी, मैं ऐसी हजारों उर्वशी सामने खड़ा कर सकता हूं और मेरी शक्ति के बदौलत तुम इस काम वासना पर विजय प्राप्त कर पाओगे और उस उर्वशी के ऊपर भी तुमने विजय प्राप्त की थी मेरे बदौलत। तो भगवान बहुत हक से अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब तक मेरा सहारा नहीं मिले, अर्थात भगवान अर्जुन के द्वारा हम सबको बोल रहे हैं कि जीव को जब तक भगवान का सहारा नहीं मिलता तब तक वो काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, इम्पॉसिबल। तो आत्मानम आत्मना, अब इसके ऊपर हम थोड़ी व्याख्या करेंगे कि इतिहास में हमारे शास्त्रों में और सिद्धांत के अनुसार इसको हम कैसे ठीक से समझें। तो सबसे पहले हम यदि अर्जुन का ही उदाहरण लें कि भगवान ने कहा आत्मा से आत्मा को निर्भय बनाओ, तो अर्जुन और पांडवों का उदाहरण सबसे पहले हम लेते हैं कि कैसे अर्जुन एवं पांडव वो भगवान की सहायता से निर्भय बने। दे बिकेम फियरलेस बिकॉज ऑफ हैविंग कृष्णा ऑलवेज नेक्स्ट टू देम। तो ये जो आत्मानम आत्मना, अर्थात भगवान बोल रहे हैं कि हर समय मैं तुम्हारे निकट रहूंगा तब जाकर तुम निर्भय होगे। जैसे यहां महाराष्ट्र में बहुत से गाड़ियों के पीछे मैं पड़ता हूं, भ्यू नको मी तुझ्या पाठीशी, है ना, पाठीशी मतलब ऐसे है ना, भ्यू नको डरमत मैं तेरे बगल में हूं। अब हालांकि ये वर्ड, ये लाइन केवल भगवान बोल सकते हैं, ये सही, ये लाइन बहुत अच्छी है, भ्यू नको मी तुझ्या बराबर पाठीशी, ये केवल भगवान ने आज के श्लोक में यही बोला है आत्मानम आत्मना, मतलब भ्यू नको मी तुझ्या पाठीशी। जो भी इस भौतिक संसार का व्यक्ति अगर ऐसा बोल रहा है तो समझ लेना चाहिए गड़बड़ है। दैट कैन ओनली बी सेड बाय कृष्णा। और अगर कोई बोलता है भ्यू नको मी तुझ्या पाठीशी तो फिर आगे बोला है म्हणून तर घाबरतो। तो पूरा स्टेटमेंट ये रहेगा, फिर ये वर्ड, ये स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन कौन बोल रहा है, ये भगवान आज के श्लोक में बोल रहे हैं। तो ये जो निर्भयता भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन भ्यू नको भगवान बोल रहे हैं, मैं तो सामने हूं तुम्हारे, पाठीशी नहीं, सामने हूं, रथ हांक रहे भगवान। तो सबसे पहले हम एक एक उदाहरण लेंगे। अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं, भागवत में श्लोक है कि युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन बता रहे हैं कि कैसे भगवान होने के वजह से हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हमने प्राप्त की वो जब तक भगवान हमारे निकट थे हम प्राप्त कर पाए, जैसे ही भगवान अंतर्धान हो गए अपने आध्यात्मिक संसार में हमारी सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो सबसे पहला उदाहरण अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को देते हैं द्रौपदी स्वयंवर का, कि द्रौपदी को मैंने जीता। युधिष्ठिर महाराज को अर्जुन पूछ रहे हैं द्रौपदी को कौन जीते, अर्जुन जीते वहां स्वयंवर में, जो वो मछली की आंख को भेदा प्रतिबिंब देखते हुए, वो भीम ने नहीं, युधिष्ठिर ने नहीं, अर्जुन ने किया। तो अर्जुन यहां पर युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि द्रौपदी को जो मैंने जीता, मैं आपको राज की बात बताता हूं, वो भगवान वहां पर निकट मेरे थे और उन्होंने चार्ज किया था मुझे, वो मेरे निकट होने के वजह से मैं वो मछली की आंख को भेद पाया उसके प्रतिबिंब को देखते। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भगवान तो इतने नम्र हैं कि भगवान कभी वो बोलने नहीं लगे, उसका ढोल नहीं पीट रहे थे कि अर्जुन मेरे वजह से तुम वो कर पाए, नहीं, भगवान ने कभी नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि कौन मुझे शक्ति दिए द्रौपदी के उस स्वयंवर में द्रौपदी को जीतने। फिर अर्जुन कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपको याद है जरासंध, जरासंध का जब युद्ध हुआ था भीमसेन के साथ और हम तीनों गए थे, अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और भीम तीनों गए थे भेष बदलकर, तो जरासंध पहचान गए कि ये कौन है तीनों। जरासंध कोई मामूली राजा नहीं था, कोई मामूली क्षत्रिय सैनिक नहीं था, उसने 10,000 राजाओं को बंदी बना रखा था और महाभैरव यज्ञ के लिए उनके बलि चढ़ाने वाला था। 17 बार उसने आक्रमण किया था भगवान के ऊपर, बहुत उसके अंदर पेशेंस था। तो जरासंध जैसे ही ये लोग जब भेष बदल कर गए तो जरासंध पहचान गया ये जो एकदम नाजुक से बांसुरी बजाने वाले ग्वाले, ये तो कृष्ण ही है, और ये जो थोड़ा अपने भुजाओं में बल रखने वाला दिख रहा है ये धनुर्धर अर्जुन होगा। तो जरासंध उसकी हैगड़ी देखो, उसकी उसका घमंड देखो कि नहीं नहीं ये मेरे मैच के लिए कृष्ण तो है ही नहीं, अर्जुन भी नहीं, भीम थोड़ा लग रहा है, भीम एकदम लंबा चौड़ा, तो भीम थोड़ा हाँ मेरी टक्कर का लग रहा है, ऐसे जरासंध ने कहा भीम, ठीक है भीम मल्ल युद्ध के लिए भीम आओ। तो जरासंध की इतनी शक्ति थी कि भीमसेन भी जरासंध पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं आपको याद है उस समय भीमसेन को वो इंडिकेशन किसने दिया था कि इसको 2 भागों में फाड़ दो जरासंध को, क्योंकि ये बचपन में ये 2 भाग इसके जोड़े गए थे, वो दूसरी कथा है। तो बचपन में ये 2 भाग में बट गया था और इसको 2 भाग इसके जोड़े गए थे, तब जाकर जरा नामक एक जो इसकी मां बनी थी उसने जोड़े थे, तो फिर क्या हुआ जरासंध, संधि जिसकी हुई जरा के द्वारा। तो यहां पर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भगवान कृष्ण जानते थे इसका इतिहास और कोई नहीं जानता था, तो भगवान ने कह दिया कैसे, वो तिनखा लिया, तिनखा लेकर भीमसेन को दिखाया। देखो बुद्धि भी होनी चाहिए, भीमसेन के अंदर बुद्धि थी, भीमसेन समझ गए नहीं तो हमारे जैसे कोई होते तो भगवान ये तिनका क्यों अचानक मेरा यहाँ पे मैच चल रहा है, मैच के बीच में तिनका तोड़ रहे हैं। तो भीमसेन समझ गए कि इसको ऐसे फाड़ो तिनके की तरह, तो भीमसेन ने ऐसे फाड़ दिया, वापस जुड़ गया वो। तो भगवान ने तिनका फाड़ा ऐसे, एक इधर फेंका एक इधर फेंका, मतलब कि ऑपोजिट फेंको, वो फेविकॉल इधर लगा हुआ है, चिपकेंगे नहीं फिर वो। तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से कह रहे हैं कि वो जरासंध के ऊपर भीमसेन विजय प्राप्त कर सके भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के द्वारा। फिर पांडवों को जब वनवास मिला द्यूत क्रीड़ा के पश्चात, तो दुर्योधन वहां पर भी नहीं छोड़ रहा था। तो दुर्योधन जानता था कि ये लोग अब वहां पर द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र है कि उधर कोई किचन सेटअप करने की जरूरत नहीं, द्रौपदी अक्षय पात्र से जितने उस दिन के लिए खाना चाहें उसमें से वो उनको भोजन प्रदान कर कर दे सकती थी। कब तक? जब तक कि उसने उस अक्षय पात्र से खाया नहीं। उस दिन अगर द्रौपदी ने खा लिया उसके पश्चात सब लोग की एकादशी। तो दुर्योधन जानता था कि कौन से समय द्रौपदी उसमें से खा लेती है, तो उसने टाइमिंग के अनुसार दुर्वास मुनि को भेजा। और दुर्वास मुनि ऐसे मुनि कि यदि उनको कोई भूखा रख दे तो बस उसकी जान खत्म। तो दुर्वास मुनि, और दुर्वास मुनि अकेले को नहीं भेजा, 60,000 दुर्वास मुनि के शिष्यों को भेजा। सोचिए 60,000, और ये लोग वन में केवल एक अक्षय पात्र लिए हुए, और 60,000 उनको। अब हम लोग अगर होते तो हम लोग बोलते हैं कि भाई बहुत से फल लटक रहे हैं, खा लेना इसको, पानी है नदी में पी लेना, हरे कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं। युधिष्ठिर महाराज को उनका सत्कार, उनके लिए पूरे व्यंजन बनाकर खिलाना है। और युधिष्ठिर महाराज ने दे बोल दिया उनको कि हाँ आप लोग आए हो, दुर्वास मुनि और 60,000 उनके शिष्य, बोले कि आप लोग स्नान करके आओ, द्रौपदी तैयार रखेगी। देखिए बिना पूछ के, पत्नी को बिना पूछ के इन्विटेशन दे दिया। तो युधिष्ठिर महाराज वो सिखा रहे हैं कि पतियों को अगर इन्विटेशन देना है तो पहले पत्नी से पूछ ले अक्षय पात्र में से कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो द्रौपदी आके बोली कि अरे भाई आपने तो ऐसे ही बिना मेरे से पूछे उनको इन्विटेशन दे दिया, और वो भी दुर्वास मुनि 60,000 उनके शिष्य। तब भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते हैं, और हम ये प्रसिद्ध कथा जानते हैं। तो भगवान वहां पर द्रौपदी को पूछते हैं, भगवान तो सब जानते हैं अंतर्यामी हैं, भगवान द्रौपदी को और चिढ़ाने के लिए, मुझे भूख लगी है। तो द्रौपदी कहती है कि अभी सबसे पहले इतना बड़ा एक टेंशन चल रहा है, दुर्वास मुनि और 60,000 वो लोग स्नान कर रहे हैं, वो लोग आने ही वाले हैं, और ऊपर से आप और टेंशन डाल रहे हो, आप बोल रहे हो आपको भी भूख लगी। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान ने द्रौपदी के खाए हुए अक्षय पात्र से द्रौपदी का जूठा खाया, और द्रौपदी का जूठा खाने के बाद दुर्वास मुनि और उनके 60,000 शिष्य वहां ढकार लेने लगे, और ऐसी ढकार लेने लगे कि यहां तक मान लो कि किसी ने उनके बिना जाने बिना कहे उनके अंदर भर दिया सिस्टम में सब कुछ ये। तो और फिर भगवान वो उतना सा अक्षय पात्र में से जो चिपका हुआ था वो खाने के बाद भगवान ने कहा नहीं कि मैंने तुम्हारा टेंशन दूर कर दिया, भगवान ने कहा अब जाओ बुला कर लाओ उनको। देखो भगवान सब कैसे सस्पेंस में रखते हैं। भगवान ने कहा जाओ बुला कर लाओ। तो युधिष्ठिर महाराज कहे सही में? हाँ मैं संभाल लूंगा, अब जाके बुला के लाओ। युधिष्ठिर महाराज जा रहे थे तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, भीमसेन को भेजो गदा के साथ। तो भीमसेन गदा के साथ, भीमसेन जानते थे कि ये भगवान है, इन्होंने कुछ तो तिकड़म लगाया है, तो वो एकदम गदा हिलाते हुए दुर्वास मुनि के सारे 60,000 शिष्य दूर से देख रहे हैं, अरे बाप रे अभी खाएंगे कैसे, यहां पर तो ये भीमसेन आ गया और हमको जल्दी जल्दी ले जाने के लिए। तो वो लोग वहीं से पीछे से ही बिना अपने आप को पहुंचे भाग कर निकल कर चले गए, 9-2-11 जिसको बोलते हैं, 9-2-11। तो यहां पर अर्जुन याद कर रहे हैं कि वो हमें किसने बचाया था, भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। हाँ, तो अगला पॉइंट है राजा विराट। राजा विराट के राज्य में जब पूरी कुरु सेना आ गई थी, ये भी कथा हम जानते हैं, और उस पूरी कुरु सेना को अकेले अर्जुन ने हराया था। तो अर्जुन यहां पर उसका भी राज बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप ये मत समझना कि मैं अकेले पूरी कुरु सेना को हरा पाया था, नहीं, सच्चाई मैं बताता हूं, असलियत क्या हुई कि भगवान श्री कृष्ण, कौन कौन थे कुरु सेना में, सब थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, सब महारथी थे। तो भगवान उनके हृदय में, जो उनके परमात्मा हैं, उनके हृदय में जाकर उनको युद्ध कौशल थोड़ा भुला दिया उनका, ताकि अर्जुन जीत पाए। कृष्णा एंटर्ड देयर हार्ट एंड मेड देम फॉरगेट द ग्लोरीज ऑफ हाउ दे शुड फाइट, तब जाकर अर्जुन जीत पाए। और फिर अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया कि जब मैं इंद्रलोक गया था युद्ध से पहले, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले मैं जब इंद्रलोक गया था, तो इंद्रलोक में वहां पर मैं इसी देह में गया था। तो अर्जुन उस समय जो एक मनुष्य की भूमिका निभा रहे पृथ्वी पर और अस्त्र शस्त्र इकट्ठा करने के लिए वो इंद्रलोक गए, तो अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि इतिहास में कोई आज तक अपने इस मनुष्य देह के साथ स्वर्ग में नहीं जा पाया। स्वर्ग में एंट्री करने के लिए आपको स्वर्ग का देह चाहिए, वीजा नहीं मिलता, तो कैसे मैं स्वर्ग में एंट्री कर सका, भगवान श्री कृष्ण, यहां की भाषा में क्या बोलते हैं, वशीला, उनके जैक के वजह से मैं स्वदेह वहां पर पहुंच पाया। और वहां केवल पहुंचकर ऐसा नहीं, वहां पर लोगों ने मेरे स्वागत किया, जबकि देवता जो हैं वो मनुष्य को बहुत नीचा मानते हैं, उनके लिए मनुष्य एकदम फालतू योनि है देवताओं के लिए। तो सोचो अर्जुन का स्वागत इन्होंने किया, और न केवल स्वागत किया, वहां पर निवात कवच नामक असुर जो देवताओं के ऊपर हावी हो रहे थे, तो इंद्र ने अर्जुन को कहा कि भाई आप तो बहुत फेमस धनुर्धर हो, ये निवात कवच थोड़ा यहां पर आए हो तो हमारी भी समस्या दूर कर दो, हमारी पार्टियों में बहुत बाधा डालते हैं। तो ये कुछ 14,000 से भी ज्यादा निवात कवच, इनके ऊपर अकेले अर्जुन भारी पड़े। सोचिए स्वर्ग में जाकर वहां पर अर्जुन ने केवल अस्त्र शस्त्र लेने गए थे, लेकिन वहां पर भी इनको परास्त कर कर आए, तो वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि ये भी कैसे हुआ, केवल भगवान श्री कृष्ण के वजह से। वो हर समय अपने आप को बैकग्राउंड में रखते हैं और सारी ट्रॉफियां मेडल सर्टिफिकेट मुझे दिलाया गया, हमको भीमसेन को, मुझे आपको। तो ये आत्मानम आत्मना, और उदाहरण हम लेंगे इसका। अच्छा, श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि इंद्र वो भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और वो याचना करते हैं कि नरकासुर, ये एक असुर जिसने माता अदिति के कुंडल चुरा लिए थे, तो आप क्यों नहीं ये नरकासुर का वध करकर माता अदिति के जो कुंडल और उनके अन्य सामग्री उनको लौटा देते। तो भगवान गए। अब देखो, इंद्र भगवान को कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ काम, मेरा काम करो। तो भगवान ने इंद्र का भी काम किया, नरकासुर का वध किया। और उस समय सत्यभामा को भगवान लेकर गए कि चलो, क्योंकि वो लोग यहां पर द्वारका में थे, तो स्वर्ग की सैर कराकर तुमको लेकर जाता हूं। तो भगवान सत्यभामा को लेकर गए। तो सत्यभामा ने जब पारिजात वृक्ष देखा, तो सत्यभामा को पारिजात वृक्ष और पारिजात पुष्प, हम सब जानते हैं, सोचो स्वर्ग का पारिजात वृक्ष, स्वर्ग का पारिजात पुष्प कितना सुगंधित। तो सत्यभामा ने कहा कि मुझे ये चाहिए, ये वृक्ष चाहिए। पहले तो उन्होंने पुष्प मांगा, तो भगवान ने ले लो, पारिजात के पुष्प तो सब जगह मिलते हैं गिरे हुए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे ये वृक्ष लगाना है द्वारका में, ने महल के कोर्टयार्ड में लगाएंगे। तो भगवान ने अब कहा, भाई ये तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये इंद्रलोक है भाई। अरे ऐसे कैसे, सब कुछ तो आप ही का है। तो फिर इंद्र उस समय राजी हो गए। इंद्र को जो पता लगा ना, अरे आपने इतने बड़े नरकासुर का वध किया, मेरे लिए इतनी सेवा आपने की, तो कम से कम मैं एक भेंट के रूप में पारिजात वृक्ष तो दे ही सकता हूं। परंतु इंद्र की जो पत्नी शची, शची देवी, उन्होंने कहा क्या ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी चलता है। तो उन्होंने रोक दिया। तो अब देखो, अब यहां पर दो पति और दो पत्नियां, एक भगवान पति बने हुए और इंद्र पति, तो ये उनकी पत्नी ने मांग लिया कि मुझे तो चाहिए। इंद्र की पत्नी ने बोला जरूरत करो लेने की, मेरे ना मरे हुए शरीर के ऊपर से जाएगा ये वृक्ष, अंग्रेजी में बोलते ना ओवर माई डेड बॉडी। तो अब यहां पर सत्यभामा इंद्रलोक में है और सत्यभामा वो जब इंद्र के कुछ अनुचर वहां पर आते हैं रोकने के लिए, तो सत्यभामा उनको गालियां देती हैं कि जाके वो इंद्राणी, इंद्राणी मतलब इंद्र की पत्नी, जाके उस इंद्राणी से कहो कि वो दो कौड़ी की, ऐसी गालियां दी गई हैं, उसका उसका मेंशन है महाभारत में कि वो दो टके की औरत, वो यहां पर मेरे पति जानती नहीं, मेरे पति कौन है, द्वारकाधीश। ऐसे कितने हजारों इंद्र तलवे चाटते हैं उनके। तो वो वहां से गोला बारूद, यहां से गोला बारूद, सब चल रहा है वागमान। तो कई बार अब यहां पर सत्यभामा को कहां से ऐसी शक्ति मिली है सब बोलने की, भ्यू नको वही। तो कई बार होता है कि कई बार हम डींगे मारते हैं लेकिन हमारे पीछे बैकअप होता है, हम जानते हैं, तब जाकर हम डींगे मारना शुरू करते हैं। एक बार दो औरतें वो ऐसे अपने पतियों के बारे में बोल रही थी, तो एक ने कहा कि अरे मेरे पति तो हिमालय खरीदने वाले हैं, हिमालय पर्वत खरीदने वाले हैं, हिमालय पर्वत खरीदने वाले। तो दूसरी ने कहा ज्यादा डींगे मत झाड़ो, मैं अपने पति को बोल दूं कि बेचना मत। तो वैसे यहां पर सत्यभामा और शची देवी इनके बीच में, तो सत्यभामा ने जो कुछ कहा उसके पीछे उनको जो साहस, वो भगवान श्री कृष्ण का सपोर्ट, इस वजह से तो उनकी निर्भयता बताई गई है। फिर यादवों की निर्भयता, यादव मतलब जैसे अमीर बाप के बिगड़े हुए औलाद होती ना, उस प्रकार से थे यादव। तो सब जाकर आज भी बोल देते हैं लोग हम भी यादव हैं, यादव आप क्या भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, हम तो यादव ही हैं। तो यादव जो वो लोग, उनके लिए भगवान ने सुधर्मा जो महल वो स्वर्ग से, जैसे सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष, वैसे ही यादवों के लिए सुधर्मा महल लेकर आ गए थे भगवान। और ये सुधर्मा महल ऐसा था कि सुधर्मा महल में कोई प्रवेश करेगा, यदि वो प्यासा है तो उसकी प्यास मिट जाएगी, भूखा है तो भूख मिट जाएगी, न तो उसको प्यास लगेगी न भूख लगेगी न गर्मी लगेगी न सर्दी लगेगी, उसके अनुसार सब कुछ मेंटेन रहेगा। बहुत हाईटेक पैलेस। तो ये हाईटेक पैलेस ये केवल स्वर्ग के लिए ही वो अलाउड था। भगवान ने, यादव चाहते थे, ये सारे जो यादव थे वो चाहते थे कि ये सुधर्मा चाहिए हमको, आप कैसे तो इसको लेके आओ यहां। तो वहां का प्रोडक्ट जो कि उसी वातावरण में वो रहता है, वहां का प्रोडक्ट भगवान इन यादवों के लिए लेकर आए। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई भगवान का भक्त बनता है या भगवान का विश्वासु बनता है तो भगवान पर्सनली जो बोलते हैं योगक्षेम वहम्यहम, तो ये आत्मानम आत्मनः की व्याख्या। फिर हम प्रहलाद, इनकी निर्भयता तो जानते हैं, 5 वर्षीय प्रहलाद हिरण्यकशिपु जैसे बड़े आतंकवादी असुर के गोद में बैठे हुए प्रहलाद, सोचिए हिरण्यकशिपु जिसने इतना बड़ा आतंक फैलाया हुआ था कि वो अपने भौवें ऊपर करता था तो सारे देवता यहां वहां छुप जाते थे। तो वो हिरण्यकशिपु जिसने पूरी सृष्टि के ऊपर अपना रौब जमा रखा था, रुबाब जमा रखा था, उस हिरण्यकशिपु के गोद में बैठ के प्रहलाद महाराज की निर्भयता देखो। हिरण्यकशिपु जब पूछता है, प्रहलाद बताओ क्या तुमने सीखा है स्कूल में, सबसे अच्छी बात विष्णु की भक्ति। तो भगवान अभी देखो, हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज जानते थे कि सबसे बड़ा शत्रु भगवान विष्णु का यही है, मेरा बाप। असुरवर्य देहिना, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सबसे असुरों में श्रेष्ठ हे हिरण्यकशिपु, यदि मुझसे जानना चाहते हो कि जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए तो सर्वोच्च उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए, और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हारा जो फालतू ऐश्वर्य उसको छोड़कर वन में जाना चाहिए, और कौन से वन में, वृंदावन में जाना चाहिए। सोचो कितना, क्या बोलते हैं, डेरिंग, डेरिंग चाहिए हिरण्यकशिपु के गोद में बैठ के हिरण्यकशिपु को लेक्चर देना। जब हिरण्यकशिपु ने, पहले तो हिरण्यकशिपु सोचा कि क्या है, छोटा बच्चा मेरे से मजाक कर रहा है, मेरा बेटा ऐसे मजाक में, वापस से दूसरी बार तीसरी बार बार बार, और उनके लेक्चर के पॉइंट्स बढ़ रहे थे प्रहलाद महाराज के। तब हिरण्यकशिपु ने मारने के लिए, फिर भी प्रहलाद महाराज निर्भय, और जब स्वयं हिरण्यकशिपु मारने के लिए तलवार निकाल ली उसने बाहर, तब भी प्रहलाद महाराज उस उस दौरान भी प्रहलाद महाराज वो डरे नहीं। और हिरण्यकशिपु ने जब पूछा कि कहां से तुमको ये शक्ति प्राप्त हो रही है, तो प्रहलाद महाराज ने बोला वहीं से प्राप्त हो रही है जहां से तुमको ये शक्ति जो प्राप्त हुई है, और वो है भगवान विष्णु। वापस भगवान विष्णु, उनका एक ही रिकॉर्ड था भगवान विष्णु की भक्ति। और जब पूछ लिया हिरण्यकशिपु ने, तुम्हारे भगवान तुमको बचाने आएंगे क्या, मैं देखता हूं इस खंभे में है, तो प्रहलाद महाराज का विश्वास, हां हमारे आचार्य कहते हैं कि प्रहलाद महाराज ने भगवान को देख लिया था खंभे के अंदर, ये उनका विश्वास था, ये उनकी दृढ़ श्रद्धा भगवान के अंदर कि भगवान, प्रहलाद महाराज ने बोल दिया कि मेरे भगवान इस खंभे में हैं, तो भगवान को उस खंभे में आना पड़ा। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु आत्मना, कि अपने भृत्य के वाक्यों को सत्य करने के लिए भगवान देखो हिरण्यकशिपु के महल के खंभे में प्रवेश कर गए। तो ये प्रहलाद महाराज की निर्भयता, भगवान की अटूट श्रद्धा के वजह से। और श्रील प्रभुपाद इनका उदाहरण हम ले सकते हैं, आत्मना आत्मानम, कि श्रील प्रभुपाद केवल 40 रुपए लेकर 70 वर्ष की उम्र में एक मालवाहक जहाज में गए अमेरिका। उनको 2.5 महीने लगे पहुंचने में, 3 हार्ट अटैक, वृद्ध अवस्था में जहां पर किसी को जानते नहीं, वहां की बोली भाषा जीवन शैली सब कुछ अलग। तो श्रील प्रभुपाद के पास वो निर्भयता कहां से आई? श्रील प्रभुपाद लिखते हैं जलदूत उनकी डायरी में कि भगवान श्री कृष्ण और उनके गुरु महाराज की जो वाणी, उस पर उनकी अटूट श्रद्धा, और उसके वजह से उनके अंदर वो अभयता, इसलिए उनका नाम क्या है, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। तो अब एक कहानी से हम ये जो भगवान ने आज के श्लोक में पॉइंट कहा है, आत्मानम आत्मना, एक राजा था जिसकी 4 रानियां थी, और इन 4 रानियों के साथ वो अलग अलग व्यवहार किया करता था। सबसे पहली जो रानी थी इस राजा की, उस रानी को बहुत खिलाता था, उसको सब प्रकार की सुख सुविधाएं देता था। दूसरी रानी के साथ केवल वो बैठकर अपने दिल की बातें करता था। तीसरी रानी जो थी, इस रानी को उसने केवल नुमाइश के लिए रखा था, दूसरों को दिखाने के लिए, एकदम सुंदर, ये देखो जैसे ट्रॉफी दिखाता है ना कोई, लिविंग रूम में रख देता है सारे ट्रॉफी, तो वैसे ये तीसरी रानी को उसने एग्जीबिशन के तौर पर रख रखा था, दूसरों को दिखाने के लिए। और चौथी जो रानी थी, हर समय उसको निग्लेक्ट कर रखता था, कभी उसको पूछता नहीं, मतलब लगता ही नहीं था कि उसने उससे शादी की है। तो ऐसे 4 रानियों वाला ये राजा। अब हुआ क्या कि जब वो अपनी मरण शैया पर था, तो मरण शैया पर अब मरते समय उसने इच्छा की कि इनमें से कोई मेरे साथ चलेगी रानी। तो सबसे पहली रानी ने कह दिया कि मैं चिता तक चलूंगी तुम्हारे, बस उसके बाद नहीं। दूसरी रानी ने कहा, दूसरी रानी कौन सी थी, क्या करता था उसके साथ, दिल की बातें करता था, घंटों घंटों बैठ के दिल की बातें करता। तो दूसरी रानी ने कहा कि मैं तो स्मशान भूमि तक आऊंगी बस। पहली ने कहा चिता तक, दूसरी ने कहा मैं स्मशान भूमि तक, तीसरी रानी कौन सी थी, नुमाइश के लिए। तो तीसरी रानी ने कहा तुम मरते ही मैं तो दूसरों से शादी करने वाली हूं, ऑलरेडी मैच भी फिक्स हो गया है। तब इसने सोचा कि ये तीनों जब इस प्रकार से अपना रंग दिखा दी तो चौथी वाली जिसको मैंने कभी समय नहीं दिया, जिसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, वो थोड़ी मेरे साथ आएगी। चौथी वाले ने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। तो राजा आश्चर्यचकित हो गया, उसके आंखों में आंसू आने लगे। तो अब हम देखते हैं कि ये चार रानियां कौन है। राजा तो पहचान गए कौन है, हम लोग सब दूल्हे राजा। पहली पत्नी हमारा शरीर है ना, इसको हर समय दिन रात हम नहलाते रहते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, खिलाते हैं, क्या कुछ नहीं करते। तो वो पहली रानी जिसको सब कुछ देता था सुविधाएं, वैसे हमारे शरीर को हम कितना कितना खर्चा बचपन से अब तक कर चुके हैं, कितने साबुन इसके ऊपर थोप चुके हैं, कितने क्रीम, कितने पाउडर, कितने किलो आटा चपाती खा चुके हैं, कितने कुंड भर भर के दाल, कितने चावल, कितना सब कुछ खिला चुके इसको, फिर भी ये शरीर जो है हर समय मांगता रहता। तो ये है, ये हमारी पहली पत्नी जिसको हम इतना खर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये पत्नी बोलती है हमारे मरते समय चिता तक, केवल चिता तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। दूसरी पत्नी हमारे रिश्तेदार परिवार वाले, जिनके साथ बैठकर हम घंटों घंटों तक ये मोहल्ले में क्या हुआ, उस मोहल्ले में क्या हुआ, इसके लड़के ने उसके लड़की के साथ भाग के शादी कर ली, पता है क्या? नहीं पता, क्या पता? तो ये सारे जो गॉसिप, दिल की बातें जिसको बोलते हो लोग, वो रिश्तेदारों के साथ कितना। और वो रिश्तेदार क्या बोलते हैं मरते समय? स्वजने स्मशाने। तो संस्कृत का एक श्लोक है जिसमें कहा गया है देहे चितायाम स्वजने स्मशाने, कि देह जो है वो केवल चिता तक जाएगा, स्वजन जो है वो स्मशान भूमि वो उठाकर ले जाएंगे और वहां पर छोड़कर वो लोग भी बस बोलकर आ जाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा समय बिताया इनके साथ, अब आगे की यात्रा आप संभालो, हम चले वापस। तो सभी वहां पर जलता छोड़कर चले आते हैं, है कि नहीं? स्मशान भूमि पर देखा है जलता छोड़कर, वो ही जलाते हैं जिसको पैदा किया, वो ही आग लगाता है। तो स्वजने स्मशाने वो छोड़कर, तो ये रिलेटिव इन्होंने कह दिया, ये पत्नी ने बोल दिया कि जब तक आप वहां पर स्मशान भूमि हो तब तक हम रहेंगे, उसके बाद नहीं। और तीसरी पत्नी जिसने तो पहले ही बोल दिया कि मेरी तो शादी किसी और से पहले से ही फिक्स हो चुकी है, तुम मरे मैं किसी और की हुई, ये है पैसा, जितनी जायदाद इकट्ठा किए हम इस पूरे जीवन भर, वो सारी जायदाद उस पत्नी के समान है जो बोल देती है कि तुम्हारे मरने के बाद ये जायदाद अब किसी और की होने वाली है। जैसे एक व्यक्ति, एक पति, वो अपने उसने अपनी पत्नी को बोल दिया था कि जितने पैसे हैं मेरे कॉफिन के अंदर रखना, मेरे साथ जाएंगे सारे पैसे जो मैं कमाया हूं, खून पैसे, खून पसीने की कमाई है मेरी, मेरे कॉफिन के अंदर सारे पैसे जाने चाहिए। तभी उसने वो विल बनाकर रखा था, मर गया, मरने के बाद अभी सभी जानते थे, उसने सबको बोल रखा था ये पत्नी देखना है, पत्नी सारे पैसे मेरे अंदर डाले वो कॉफिन के अंदर। तो सभी वहां पर आए फ्यूनरल पे, उन्होंने पूछा कि वो डाला क्या पैसे, वो बोला था हाँ हाँ चेक फाड़ के डाला अंदर उसका जो भी प्रॉपर्टी था जितना पैसा था उसका चेक फाड़ के अंदर कॉफिन में डाल दिया। तो ये जो तीसरी पत्नी है किसी और की, और जो अंतिम पत्नी चौथी वाली जिसके ऊपर कभी उसने कोई ध्यान नहीं दिया, हर समय उसको दुर्लक्ष निग्लेक्ट किया, कभी उसको कोई खिलाया पिलाया नहीं, कुछ नहीं। वो पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, और वो है परमात्मा, आत्मानम आत्मना। तो हमारे जीवन की यही कथा है या व्यथा है कि हम वो जो चौथी पत्नी है उसको इतना दुर्लक्ष कर दिए हैं, परंतु फिर भी कृपावश भगवान हमारे हर योनि में हमारे आत्मा के साथ निकट यात्रा कर रहे हैं 84 लाख योनि में। तो ये भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को। तो जीव की दयनीय स्थिति की श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है, इसके विषय में मैं सोच रहा था। तो सबसे पहले हमारी श्रृंखला प्रारंभ होती है भगवान की विस्मृति। जीव भोगवांछा कोरे, कि जब जीव भोगवांछा करता है, कृष्णा भूलिया जीव, जब भगवान श्री कृष्ण को भूलता है, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झोपटिया धरे, कि कृष्ण को भूलने के वजह से फिर अगली श्रृंखला में पड़ता है वो भौतिक इंद्रिय भोग की लालसा। भौतिक इंद्रिय भोग की लालसा भगवान की विस्मृति के बिना ही नहीं सकती। जब तक भगवान की विस्मृति नहीं होती तब तक भौतिक इंद्रिय भोग की लालसा आ ही नहीं सकती। या इसका रिवर्स लॉजिक क्या है कि जब तक भगवान की स्मृति है तब तक भौतिक इंद्रिय भोग की लालसा आ ही नहीं सकती। फिर तीसरा स्तर क्या आता है कि वो इंद्रिय भोग कौन हमको प्रदान कर, माया, माया देवी प्रदान कर, तो उसके ऊपर अटूट श्रद्धा हमारी आ जाती है। हमको लगता है कि हाँ ये मुझे मेरा भौतिक इंद्रिय भोग प्रदान कर दे रही है। फिर अगला स्तर है कि भगवान आकर बताते हैं कि ये बहुत बड़ा जाल है। भगवान आकर अपने शास्त्रों के द्वारा क्या बता रहे हैं, माया देवी का बहुत बड़ा जाल है। तो हमको भगवान की वाणी पर संशय होता है, वी स्टार्ट डाउटिंग कृष्णाज वर्ड्स, और फिर हम माया के द्वारा विश्वासघात का पात्र बनते हैं कि जो हमने आध्यात्मिक संसार को छोड़ के इतना बड़ा रिस्क लिया, सोचो कितना बड़ा रिस्क हमने लिया, आध्यात्मिक संसार छोड़कर यहां आए, यहां पर माया देवी की इतनी सेवा, अटूट श्रद्धा इस आशा में कि माया देवी मुझे झिलाएगी पिलाएगी खिलाएगी सब कुछ कराएगी, अंत में माया देवी ठोकर मारकर विश्वासघात क्या देती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसके बदले में। और जब विश्वासघात का हम पात्र बन जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, न तो भौतिक सुख न कृष्ण की कृपा। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, भगवान श्री कृष्ण को भूलने के वजह से। और यही आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं आत्मानम आत्मना। अर्जुन इस पूरी लड़ाई में चाहे काम शत्रु चाहे ये कुरु सेना मुझे मत भूलना, ये भगवान कह रहे हैं। तो ये है आत्मानम आत्मना, इन दो शब्दों की व्याख्या। अब आगे भगवान ने अर्जुन को क्या, महाबाहो इस नाम से पुकारा है अर्जुन को। तो अर्जुन की भुजाएं जो कि इतनी बलशाली, तो महाबाहो हमारे आचार्य दो अर्थ बता रहे हैं महाबाहो के। पहला अर्थ कि अर्जुन की भुजाएं शारीरिक रूप से बहुत बलशाली भुजाएं थी अर्जुन की, ऐसी भुजाएं कि महाभारत में वर्णन है अर्जुन यदि किसी योद्धा को मारना चाहते थे जो कि 3-4 हाथियों के पीछे छुपा हुआ है, तो अर्जुन की भुजाओं में इतनी शक्ति थी कि उनके उनका तीर छोड़ा गया, छोड़ा हुआ तीर उन 3-4 हाथियों को भेद कर उस योद्धा को वहां पर खत्म कर देता। मतलब वो कोई रजनीकांत टाइप नहीं था। ओरिजिनल है, ओरिजिनल। तो अर्जुन के भुजाओं में ऐसी शक्ति महाभारत में वर्णन है कि दसवें दिन अर्जुन अभिमन्यु के वध के पश्चात जो अर्जुन के अंदर आक्रोश अब कुरु सेना का वध करने के लिए, तब तक अर्जुन थोड़ी थोड़ी सी नरमी वो बरत रहे थे। उसके बाद में अभिमन्यु के वध के बाद में अर्जुन के अंदर जो क्रोध और आक्रोश कुरु सेना के प्रति, तब दसवें दिन के पश्चात जब अर्जुन ने युद्ध जिस तरीके से किया, तो महाभारत में वर्णन है कि शल्य इत्यादि ये सारे एक हजारों की संख्या में योद्धाओं को एक साथ अकेले अर्जुन के ऊपर फेंके और अर्जुन ने अकेले इन हजारों महारथी अतिरथी इन सबको धराशायी किया। और केवल वहां पर गिरे पड़े योद्धाओं को देखकर लोग कह देते कि अर्जुन ने मारा होगा, क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन इन योद्धाओं को दसवें दिन के बाद मारते थे, उनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई अर्जुन ने कि उनके मृत शरीर के टुकड़े टुकड़े गिरे हुए वो देखकर लोग कह देते कि ये ट्रेडमार्क था, ये अर्जुन ने मारा है। ये अर्जुन के भुजाओं ऐसे तीर केवल अर्जुन ही मार सकता है, ऐसे किसी योद्धा को केवल अर्जुन ही मार सकता है। तो ये अर्जुन के भुजाओं की शक्ति, इसलिए भगवान यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं महाबाहो। तो भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि महाबाहो का केवल अर्थ ये नहीं कि तुम्हारे शारीरिक भुजाओं में ऐसा बल हो कि तुम योद्धाओं को इस प्रकार से धराशाही करो। महाबाहो का एक और अर्थ भगवान यहां पर अर्जुन को बता रहे हैं कि जिसके अंदर, जिसके भुजाओं में, जिसके कंधों पर जिम्मेदारियों को उठाने की शक्ति, उसे कहते हैं महाबाहो। और कौन सी जिम्मेदारी, हमारे आचार्य उन जिम्मेदारियों के विषय में बता रहे हैं, तीन जिम्मेदारियों के विषय में बता रहे हैं। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको भगवान महाबाहु बनने के लिए बोल रहे हैं। अर्जुन के द्वारा भगवान हम सबको बोल रहे हैं बिकम महाबाहो, बिकम रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि हमारी जो गलतियां हैं, हमारी जो त्रुटियां हैं, खामियां हैं, किसी और पर उंगली उठाने के बजाय स्वयं उसकी जिम्मेदारी लो, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी इज टू टेक और बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर वन्स ओन मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स, कि मैंने आध्यात्मिक संसार छोड़ा जिसके वजह से मैं त्रस्त हूं। किसी और को दोष मत दो, डोंट प्ले द ब्लेम गेम, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वन सेल्फ। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शास्त्र में बताया गया है कि जब हम अपनी माता के गर्भ में होते हैं, जो पीड़ा हर एक शिशु अपनी माता के गर्भ में अनुभव करता है, उस समय श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है। वो शिशु गर्भ के अंदर इतनी पीड़ा में, चारों ओर से वो बंद मलमूत्र से घिरा हुआ, कीटाणु उसको काट रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो जीव शिशु त्रस्त भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे इस पीड़ा से आप बाहर निकालो, मैं निकलते ही आपकी भक्ति करूंगा, मैं फिर से किसी गर्भ में नहीं जाऊंगा। एवरी एम्ब्रियो प्रेज लाइक दैट अंटू कृष्णा, तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, मैं भजन करूंगा हर लो बाधा। क्यों भूल गया सारी वो बातें, पैदा होने के बाद क्यों भूल गया वो सारी बातें, तेरी बदली नजरिया रे। और फिर तू तेरा सब बर्थडे मनाने लगे, आ गया राजा बेटा पैदा हुआ, पेड़े बाटो बर्थडे मनाओ, उसके बाद में सब भूल जाते हैं हम कि हमने क्या वादा किया था भगवान से, वो सब भूल गए। सो बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रॉमिस विच वी ऑल हैव मेड टू कृष्णा व्हेन वी वर इन द वूम्ब ऑफ अवर मदर्स। क्या प्रॉमिस? कि मैं आपकी भक्ति करूंगा और मैं फिर कभी किसी के भी गर्भ में नहीं जाऊंगा अपने कर्मों के वजह से। सो रिमेंबर दैट प्रॉमिस। ठीक है, पैदा होने के बाद हम भूल गए, भगवान को भूल गए, हमारे प्रॉमिस को भूल गए, हमारे व्रत को भूल गए, परंतु जो भगवान ने कृपावश प्रकृति के द्वारा हमको जिलाया, फिर भी इतना बड़ा किया, कम से कम उस प्रकृति के ऋण को तो चुकता करो। प्रकृति ने हमको क्या कुछ नहीं दिया है, इस प्रकृति का ऋण क्या है? हम भगवान के भक्त बनकर भगवान की सेवा में लगे। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, महाबाहो का अर्थ है हम सब अर्जुन के पदचिन्हों पर चलते हुए, या भगवान जो अर्जुन के द्वारा हमको समझा रहे हैं कि हम महाबाहो बनकर ये तीन जिम्मेदारियां सबसे पहले लें। बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर ओन मिस्टेक्स एंड फॉल्ट्स, बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉमिस वी मेड टू कृष्णा एंड द ड्यूटी टुवर्ड्स मदर नेचर। अब अंतिम दो शब्द भगवान ने कहा है, काम रूपम दुरासदम। तो ये चित्र मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये कामदेव का चित्र है। कामदेव कौन है? काम वासना के मूर्तिमान स्वरूप, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं क्यूपिड। तो जो कामदेव है, क्यूपिड जो है, दिखने में बहुत सुंदर, जैसे यहां पे आप देखो कितना सुंदर दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि ना फूलों की बाण मार रहा है अपने धनुष से। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं काम रूपम। काम रूपम का अर्थ हमने पहले भी लिया था, काम रूपम अर्थात बहुत सुंदर दिखने वाला। परंतु भगवान काम रूपम के साथ क्या बोल रहे हैं? काम रूपम दुरासदम। तो ये दो शब्द हैं, इसके अंदर विरोधाभास लग रहा है। तो इसका अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका विरोधाभास इस प्रकार से है, लस्ट इज ब्यूटीफुल डेडली एनिमी, काम रूपम दुरासदम मतलब सुंदर दिखने वाला भयानक शत्रु। अब शत्रु है, भयानक है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। जैसे मान लो आप शत्रु के आमना सामना आपका हो रहा है, आपके शत्रु का आमना सामना, आप जानते हैं ये भयानक शत्रु है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, तो आप धनुष बाण उस पर चलाने के बजाय फोटो खींच रहे हो उसकी। क्या शत्रु तो है लेकिन कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है। लस्ट इज लाइक दैट। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन मतलब ऑपोजिट चीजों को एक साथ कहा जाता है। जैसे भगवान यहां पर काम रूपम दुरासदम बोल रहे हैं, एक ऑक्सीमोरॉन है। तो ऑक्सीमोरॉन के कुछ उदाहरण, जैसे देयर वाज अ लिटिल क्राउड, लिटिल बोल रहे हैं और क्राउड भी बोल रहे हैं, देयर वाज अ लिटिल क्राउड हैप्पीली मैरिड। तो वैसे ही काम रूपम दुरासदम, मैं कुछ इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, अलग अलग जो पतंजलि योग सूत्र इत्यादि, तो उसका निष्कर्ष निचोड़ कुछ टर्म्स जो हैं ऑक्सीमोरॉन जो भगवान ने यूज किया वो इस प्रकार से हैं, ब्यूटीफुली डेंजरस। जैसे आजकल आपने सुना होगा, लोकल भाषा में लोग बोलते हैं ना, क्या खतरनाक आइटम बना है ना, अब अगर लिटरली उसको ट्रांसलेट करो तो अगर मान लो कि किसी ने हलवा बनाया, क्या खतरनाक हलवा बनाया, अरे खाऊं कि नहीं खाऊं, तो वर्ड यूज कर रहे हैं खतरनाक, लेकिन उसका कनोटेशन क्या है। तो वैसे यहां पर भगवान काम रूपम बोल रहे हैं, परंतु है क्या ब्यूटीफुली डेंजरस। स्वीटली पॉइजनस, कि इसके अंदर मतलब पॉइजन है, स्वीट पॉइजन जिसको बोलते हैं ना। इसलिए कई बार आप देखो कई लोग जो हैं बोलते बहुत मीठा है, मीठा बोल बोल के जेब खाली कर देते हैं आपकी। एक बार एक पत्नी अपने पति से पूछती है कि ए जी आपको मेरी सबसे अच्छी कौन सी बात लगती है, मेरी सुंदर अदाएं, मेरी कुकिंग, क्या सबसे अच्छी। वो जरा पेपर पढ़ रहा होता है बार बार, बताओ बताओ मेरी सबसे अच्छी क्या बात लगती है, ये जो तेरी मजाक करने की आदत है सबसे अच्छी लगती, इसको बोलते हैं स्वीटली पॉइजनस। वही बात हालांकि बहुत अलग तरीके से बोली गई, साइलेंटली कंटेजियस, महामारी होती है लेकिन बहुत साइलेंटली फैल रही, और फिर फाइनली हमारे योग सूत्र के अनुसार काम वासना के लिए क्या कहा गया है, पोलाइटली फेटल, कि खंजर घोपा, परंतु खंजर इस प्रकार से घोपा है कि एकदम आप बोल बोल के, एकदम ऐसी भाषा। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया कि मैं कुछ वर्ष कानपुर में था, तो कानपुर की वहां की भाषा ऐसी है कि वो लोग अरे तुरे बोलते ही नहीं है वहां पर, बहुत उनकी रिफाइंड भाषा है कानपुर में। तो कानपुर में मैं नहीं बोलेंगे, हम जा रहे हैं, हम आएंगे, हम बोलते हैं। पहले तो मेरे को समझ में नहीं आया था, आप अकेले आ रहे हो और भी कोई आ रहा है, वो लोग बोलते नहीं नहीं हम आएंगे, हम मतलब नहीं हम आएंगे, वो लोग कभी मैं नहीं बोलते और कभी तू नहीं बोलते, आप बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा तुम बोलेंगे। तो अगर झगड़ा भी होगा तो एकदम रिफाइंड लैंग्वेज में झगड़ा होता, हम आपको बता रहे हैं, आप अगर सुधरोगे नहीं आपको तमाचा लगाएंगे हम, तो हम आप चल रहा है लेकिन तमाचा लगा रहे हैं। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं ये काम रूपम दुरासदम क्या है, बहुत हम आप करते करते, हम आप करते करते चूना लगाता है, पोलाइटली फेटल। तो ये है भगवान ने जो आज के श्लोक में अंतिम शब्द कहे हैं, इसलिए ये असली रूप है। काम वासना बाहर से जो एकदम सुंदर दिखने वाला या दिखाने वाला जब हावी होता है किसी जीव के ऊपर, तो उसका स्वरूप जो उसका इफेक्ट है, इफेक्ट उसका इफेक्ट इस प्रकार से है कि वो जलाता है, बस इट बर्न्स लाइक अ फायरी डीमन। भगवद गीता में एक लस्ट का एक फोटो भी है फायरी डीमन के अनुसार। तो भगवान फिर बोल रहे हैं कि ऐसे दुर्जय काम शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त कोई कैसे कर सकता है। प्रश्न अब वापस वहां घूम फिर कर आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कॉन्कर लस्ट बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, और ये डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आध्यात्मिक शक्ति से हम काम वासना के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करें, इसकी चर्चा हम करेंगे भाग दो अगले बुधवार को। तो अगले बुधवार का हमारा शीर्षक रहेगा देयर विल बी अ सेमिनार ऑन ओवरकमिंग लस्ट बाय लस्ट। आप लोग बोल रहे हो अरे ओवरकमिंग लस्ट बाय लस्ट कैसे, अभी नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको अगले बुधवार को आना होगा जानने के लिए हाउ वी कैन ओवरकम लस्ट बाय लस्ट। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की जय।